الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج تیسرا درس ہوگا کتاب گناہان کبیرہ، آیت اللہ عبدالحسین دستغیب شرازی قبلہ کی، خدا ان کی روح کو بلند درجات عطا فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف کرے، اور جن کے وسیلے سے ہمیں یہ ہدایت پہنچ رہی ہے ان کی کوششوں کی وجہ سے خدا ان کو ایک اچھا اجر اس چیز کا دے. جو پچھلے درس میں عرض ہوا تھا وہ یہ تھا، اس کا خلاصہ تقریباً یہ بنتا ہے کہ ہم نے پہلے درس کا خلاصہ کیا تھا، جس کا کہ آپ کو بتایا تھا کہ سب سے زیادہ جو مہم چیز ہے وہ یہ کہ یہ نہیں کہ انسان اچھے کام انجام دے، بلکہ مہم یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. کیونکہ اگر اچھے کام بھی وہ انجام دے رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، تو اس کے اچھے کام جو ہیں وہ نلیفائڈ ہو جاتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ آپ کو کہی تھی کہ تقویٰ جو ہے اس کا مطلب ہے طاقت، اور اگر انسان کی قوت یا طاقت خدا کی اطاعت کے لیے بھرتی ہے، تو اسی طرح سے اس کی طاقت شہوت کے پیچھے جانے کے لیے، ہوائی نفس کے پیچھے جانے کے لیے، یا شیطان کی اطاعت کرنے کے لیے کم ہوتی ہے. اور یہ برعکس بھی ہے کہ جب شیطان کی پرستش اور اپنی ہوائی نفس کی پرستش کرنے کی طاقت بھرتی ہے، تو خدا کی اطاعت کرنا وہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ طاقت کم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو چاہے کہ وہ پرکھے، اور ہم سے کہا گیا ہے کہ بہت دفعہ کہا گیا ہے احادیث کے اندر کہ اپنے آپ کو پرکھیں، اس دنیا کے اندر اپنا حساب کتاب کریں. اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پر ہیں، آیا آپ جنت میں ہیں، آیا آپ دوزخ میں ہیں، آیا آپ ان لوگوں میں شمار ہیں جن کے منتظر رہیں گے کہ ان کا حساب کتاب کیسا ہوگا، یا آپ ان لوگوں کے اندر ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے لیکن بعد میں نکل آئیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس طاقت کو پرکھیں، اور پرکھنے کے لیے جو ہے ہماری یہ جو زندگی ہے اس کے اندر بہت سے مواقع آتے ہیں، بہت سارے سرکمسٹانسز آتے ہیں. یعنی آپ کا ہر لمحہ جو ہے اگر آپ چاہیں تو پرکھ سکتے ہیں کہ آپ کے تقویٰ کی طاقت یعنی کتنی ہے، اور شیطان کی پرستش کی طاقت کتنی ہے. جتنا انسان اس طاقت کو بڑھاتا ہے، اتنا ہی اس کے لیے اس دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے. تو یہ ایک بات تھی. دوسری بات جو ہم نے آپ سے، تیسری بات جو ہے وہ عرض یہ کی تھی کہ جہاں پر یہ کوشش کرنا، یا اس کو کہتے ہیں ریاضت، اور ریاضت کے اندر ماہ رمضان ہم نے پورا گزارا ریاضت کی، اور خدا بھی اس بات کو کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ شاید آپ میں یہ جو طاقت ہے میری اطاعت کرنے کی اور شہوت سے بچنے کے لیے شاید زیادہ ہو جائے. تو اب جہاں تک بات پہنچی تھی، کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو اس وقت اب ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن جہاں تک بات پہنچی تھی وہ یہ تھا کہ صرف اور صرف اپنے آپ کو شیعہ کہہ دینا اور اس کے ساتھ عمل نہ رکھنا، یہ انسان کو اس دنیا میں بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا اور آخرت کے اندر بھی نہیں. اور شفاعت پہ بیسکلی جو گفتگو تھی وہاں پہ ہم نے جو درس تھا اس کو ختم کیا تھا. شفاعت کے حوالے سے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ جب انسان اس دنیا کے اندر کسی ایک چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، یا اپنی زندگی کے سفر میں ہم سفر بنا لیتا ہے، تو وہ چیز اس کے شفیع بن جاتی ہے، یعنی اس کا پیر بن جاتی ہے. شفاعت جو ہے وہ شف سے ہے، شف کہتے ہیں پیر کو. اب اگر کسی انسان نے دعا کو اپنی زندگی کے اندر لیا ہے اور وہ لمحے لمحے پر اس کے ساتھ ہے، یا توبہ ہے، یا قرآن ہے، یا ائمہ علیہ السلام کی احادیث ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی وہ شفیع بن جاتی ہیں. اس دنیا کے اندر اس کو ہدایت ملتی ہے، اور اس کا جو اثر ہوتا ہے جو عالم ملکوت کے اندر ہم ابھی نہیں دیکھ پا رہے، وہ روز معاشر میں ہم دیکھ پائیں گے، اس کا اثر شفاعت کے حوالے سے ظاہر ہوتا ہے. دوسرا اس کا پہلو جو، یا نظریہ زاویہ کہہ لیں کہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا، وہ یہ تھا کہ انسان इस दुनिया के अंदर गुनाह करता है और भूल जाता है। और अब अगर उसे याद हो एक गुनाह, तो वो उसकी तौबा जरूर मांगे, लेकिन अब वो भूल गया है गुनाह को, अब वो तौबा भी नहीं मांग सका। लेकिन अकीदा उसका सही है, उसके सिदके नियत है और वो अमल भी सही करना चाहता है, लेकिन गुनाह को भूल गया। अब रोज़े माशर के अंदर अल्लाह सुब्हानहु तआला ने ये रुतबा दिया है अहले बैत अलैहिस्सलाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अम्बिया अलैहिस्सलाम को, अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुछ उलमा को और शहदा को और सादिकीन को और आबिदीन को और साबिरीन को और साइमीन को और तवाबीन को, ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनको ये रुतबा हासिल है कि वो उन लोगों की शफात कर सकते हैं कि जो भूल गए गुनाहों को और उसकी तोबा नहीं मांग सके, उससे खुदा की मगफरत नहीं मांग सके। तो ये जो पहलू है वो पहलू जो आम नज़रिया है कि जो है वो हमें वो छुड़ा देंगे, हम मुजरिम होंगे, हमें जिस तरह के इस दुनिया के अंदर अगर हम एक मालदार इंसान है तो वो एक लॉयर को ले लेता और लॉयर से कहता है कि मुझे छुड़वा दो, हालांकि उसने गुनाह किया होता है और वो लॉयर उसे छुड़ा देता है। तो ये वाला एबजाविया हम इसको जो है वो हमारे अकीदे का हिस्सा नहीं है। ये जो दो पहलू हैं इसके बारे में ये हमारे अकीदा का हिस्सा हैं और इसमें कोई मुश्किल बात भी नहीं है। अब आप देखें कि अगर एक इंसान, एक आम इंसान जो कि तकवा रखता है, मुत्तकी है, परहेजगार है, अच्छा बंदा है खुदा का, उस बंदे से लोगों को फैज पहुंचता है, सही, उस बंदे से लोगों को रहमत इलाही मिलती है, उस बंदे से लोगों को बहुत सारी तौफीकात मिलती हैं उस बंदे के वसीले से, ये उसका ये वो रुतबा है जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहु तआला ने उसको लोगों के लिए फ़ायदा मंद बनाया है। तो जो रहमतुल आलमीन हो, सही, जो रहमतुल आलमीन हो, जिसके पास के इस दुनिया के भी और आखिरत के तमाम ख़जाने हों, जो कि अशरफुल मखलूकात हो, तो ये कोई बात मुश्किल नहीं है इंसान को इस बात पे यकीन लाना कि उसके पास ये रुतबा होगा कि उसके फैज से रोज़े महशर में भी लोग मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। तो अब जहाँ पे अब शफात का पहलू था वो हमने बात कर ली। अगर हमारे भाइयों को जो सुन रहे हैं या जो भाई हमारे बैठे हैं उनमें से किसी को अगर सवाल कोई उठता है वो कर सकते हैं या ईमेल पे भेज सकते हैं, तो उसका इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जवाब देंगे। हमारे साथ मुश्किल ये है कि ये किताब जो है वो बहुत ही प्यारी है और दिल ये चाहता है कि एक एक जुमले को, एक एक लफ्ज़ को जो है वो दिक्कत के साथ और गौर करके इंसान उसको पढ़े और समझे। लेकिन अब उसके साथ हमारी ज़िंदगी भी छोटी सी है, थोड़ी सी है, और वो फिर होगा ये कि सवाए गुनाह ने कबीरा की किताब के अलावा हम कोई और किताब पढ़ नहीं सकेंगे। तो आप लोगों से दरख्वास्त ये कि आप इस किताब को अपनी यानी हर रोज़ का जो है ना वो हिस्सा बनाएं, यानी एक आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा जो है हर रोज़ आप निकालें और इस किताब को पढ़ें। आप अगर इसे 10 दफ़ा भी पढ़ेंगे, 15 दफ़ा, 1000 दफ़ा भी पढ़ेंगे ना, तो इस किताब के पढ़ने से आपको हर दफ़ा जो है ना कुछ नई चीज़ मिलेगी। तो अगर हम ये काम करें जो हफ्ते के अंदर हम एक दूसरे को नहीं देखते, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो फ़ायदा होगा। शिया जो लफ्ज़ है वो अब हमारे लिए या इस वक्त के ज़माने के अंदर वो मंसूब हो गया है एक फ़िरके के लिए। सुन्नी जो लफ्ज़ है वो मंसूब हो गया एक फ़िरके के लिए, जिस तरह से मुसलमान जो है वो एक कौम के ऊपर दलालत देता है या एक ख़ास लोगों के ऊपर दलालत देता है, या जिस तरह क्रिश्चियनिटी है वो एक ख़ास लोगों के ऊपर दलालत देती है, या जूडिज़म है वो एक ख़ास ग्रुप के ऊपर जो है वो दलालत देती है, सही। जिस तरह घर है, घर दलालत देता है एक साख्तमान के ऊपर, अब वो घर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन बिलाखिर वो घर होगा, सही। तो जब नाम रखा जाता है तो वो दलालत देता है उस चीज़ के ऊपर, अब उसकी क्वालिटी जो है वो नहीं देखी जाती, लेकिन अगर उसके अंदर वो अज़ा हैं, वो पहलू हैं जिसकी वजह से उसको घर कहा जा सकता है, तो उसको घर कहते हैं, सही। अब बाद में सिफात उसकी लाई जा सकती हैं कि ये बड़ा घर है, छोटा घर है, अच्छा घर है, बुरा घर है, यानी वो आप बाद में सिफात ला सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ जिसके अंदर वो आज़ा ही ना हो जिससे कि आप घर कह सकें, उसको आप घर नहीं कहेंगे, यानी उसके अंदर अच्छा बुरा, यानी बड़ा छोटा, उसके अंदर वो बात भी नहीं आएगी जब आप उसे घर ही नहीं कह सकते। मसलन एक गाड़ी है, आप गाड़ी को घर नहीं कहेंगे क्योंकि गाड़ी के अंदर वो आज़ा नहीं जिससे कि घर बनता है। अब मुश्किल ये है कि जब आप एक नाम को एक फिरके के लिए दे देते हैं और उस फिरके के अंदर कोई भी वो आज़ा नहीं पाए जाते, उस खास ग्रुप लोगों के अंदर कोई आज़ा वो चीज़ नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी आप उसको उस नाम से पुकारते हैं, तो ये गलत बात है। समझ रहे हैं? जैसे कि गाड़ी को आप घर नहीं कह सकते और घर को आप गाड़ी नहीं कह सकते। तो अब जो शिया लफ्ज है उसके हमें देखना यह है कि आइमा अलैहिस्सलाम ने उसके क्या अज़ा बनाए, क्या पहलू बताए, क्या बताया कि वो चीजें जब जमा होती हैं तो उस शख्स को शिया कहा जाता है। अगर वो चीजें जमा ना हो तो उस शख्स को शिया नहीं कह सकते आप। उसके लिए फिर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हो सकता है उसको मुहिब कहा जा सके, हो सकता है उसको मसलन उनका मानने वाला कहा जा सके। मानने वाला ये कि अकीदा रखता है, इमाम अली की विलायत में उसने इकरार कर दिया कि इमाम अली की विलायत में मैं अकीदा रखता हूँ, या उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है, लेकिन उसको शिया नहीं कह सकते आप। हमारे साथ मुश्किल यह है कि 200-300 साल पहले इसको फिरका के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया गया। हालांकि और ओरिएंटलिस्ट का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। ओरिएंटलिस्ट से पूछेंगे शिया कौन है, सुन्नी कौन है, वो कहेंगे जी शिया वो बंदा है जो रसूल के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत के अंदर करके तो वो उनके साथ, और सुन्नी वो है जो कि रसूल के बाद उन्होंने कहा कि नहीं किताब ठीक है और उसके बाद वो उसके साथ चल पड़े। लेकिन हकीकत के अंदर शिया का जो लफ्ज है उसकी अगर इंसान के अंदर वो पहलू नजर ना आए तो आप उसको शिया नहीं कह सकते। समझ रहे हैं? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से भी, बाकी के आइमा अलैहिस्सलाम के हवाले से भी बहुत सारी हमें पहलू पता है कि क्या सिफात हैं, कि जो अगर वो सिफात हों तो फिर इंसान शिया है। यानी सिर्फ ये कह देना कि मैं इमाम अली की वलायत में अकीदा रखता हूँ, उनके हिसाब से ये बंदा शिया नहीं बनता।
तो फिर जब हम मुसलमान के लिए कहते हैं कि जब आपने कलमा पढ़ लिया तो आप मुसलमान हो गए, तो जिसने अली की ये वलायत को मान लिया या मान लिया कि रसूलुल्लाह के बाद ये पहले खलीफा है या पहले इमाम है, तो उनको हम शिया क्यों नहीं कह सकते? वो इतलाक जो मुसलमान पर हो रहा है वो यहाँ पर क्यों नहीं?
आगा का सवाल यह है कि जब हम मसलन कहते हैं कि कोई शख्स है उसने अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहद अन मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया है और उसके बाद वो मुसलमान हो जाता है और हम उसको मुसलमान ही कंसिडर करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जब कोई एक बंदा कहे कि अशहद अन अली वलीउल्लाह तो आप उसको शिया तसव्वुर कर लें? अब सब देखिए, हमने इसकी तारीफ नहीं बनाई। हमारे साथ मुश्किल ये है कि हमें जो तारीफें मिली हैं वो मिली हैं आइमा अलैहिस्सलाम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरान से। हमारे पास खुद से हम किसी तारीफ को कयास नहीं कर सकते। यानी हमें एक अगर तारीफ बनाना चाहे हम उसका, ये अब इस वक्त हम कयास कर रहे हैं कि भाई जिस ये कयास है ना, ये सुगरा आपने बनाया, कुबरा बनाया, उसका एक नतीजा निकाला और अब आपने सवाल किया कि आला साहब फिर ये किस तरह से हो सकता है? सही, हम कयास नहीं कर सकते। हमें जो चीज़ बताई गई है हमने उसके बारे में सोचना, और सोचने के बाद उसके ऊपर यकीन लेकर आना, ईमान लेकर आना, और उस बात पे तस्लीम हो जाना, उस बात पे हमें तस्लीम हो जाना। हमारा एक बड़ा अलमिया ये हो गया हमारे साथ, हम यानी हम तो दूसरों को कहते हैं ना कि वो कयास करते हैं, हम जितना कयास करते हैं शायद ही कोई और करता हो। अच्छा, अब उसकी हम इंशाल्लाह अहादीस हैं जो कि मैं हम पढ़ेंगे तो उससे जो है ये मतलब और वाज़े होगा। सही, तो सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अच्छा, हत्ता अब एक वो एक उन्होंने मिसाल लेकर आए हैं तो उस मिसाल को अर्ज कर दें, उसके बाद फिर उन हदीसों का भी उनके ऊपर भी गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई देखो दो है ना, एक शिया और एक मुहिब है। हत्ता उन्होंने कहा कि जिन लोगों को शिया का लकब, अब हम गए जिन लोगों को शिया का लकब मिला और वो सही माना में वो शिया थे, हत्ता उनको जब शिया कहा जाता था तो वो मुतजलजल यानी वो खौफ से जो है वो कांपने लग जाते थे, रोने लग जाते थे। तो उन्होंने मिसाल जो है वो लेकर आए कि मोहम्मद इब्ने मुस्लिम सकफी, जो कि बहुत ही बड़े सहाबी गुजरे हैं हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, सही, तो उन्होंने जब उनके रोने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि तुमने मसलन हमें जो है इस तरह इतनी अजीम शख्सियतों के साथ निस्बत दे दी है कि हम उसके हकदार नहीं हैं। तुमने हमें फातिमे और जाफरी कहा है, मसलन हम इस चीज के हकदार नहीं है कि आप आपसे हम ये बैग करते हैं, हम आपको वास्ता देते हैं कि हमें ये निस्बत ना दें। ये कौन लोग हैं कि जिसको के दोनों इमामों ने उनकी तस्दीक की हुई है, फकीह हैं वो, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, इमाम के हवाले से वो मौसक यानी वो काबिल ट्रस्ट हैं, और हम ये नहीं कि कोई दूसरा हमें कहे, हम खुद कहते हैं ना कि दूसरा कोई कहे, हम तो खुद कहते हैं कि हम शी हैं। तो एक ये, और दूसरी भी कुछ अहादीस हैं कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हवाले से इमाम ने कहा कि हमारे शिया वो हैं कि जो कि हमारे जो अपनी जिंदगी के हर पहलू में हमारे नक्शे कदम पर चलते हैं, जिनका कि हर अमल जो है वो हमारे नक्शे कदम पर होता है। बिहार और अनवार की हदीस है। इसी तरह से एक और उन्होंने वाकया बयान किया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद से बाहर निकले, और जब मस्जिद से बाहर निकले तो उन्होंने कुछ लोगों को उनके पीछे चलते हुए महसूस किया। सही। अब आप अपने अगर जेन में खाका बनाना चाहें कि इमाम मस्जिद में गए, बाहर निकले, जैसे बाहर निकले तो उनके पीछे कुछ लोग चल पड़े, तो इमाम ने महसूस किया कि वो पीछे चल रहे हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग कौन हो। उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा कि जी हम आपके शिया हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके शिया हैं, तो इमाम अली सलाम ने उनके चेहरों की तरफ देखा दिक्कत के साथ, और फिर कहा कि आपके चेहरों के अंदर कोई शिया के होने की कोई अलामतें क्यों नहीं नजर आ रही। उन्होंने उनसे सवाल पूछा, लोगों ने कहा कि हम आपके शिया हैं, इमाम ने उनके चेहरों को देखा दिक्कत के साथ और फिर पूछा कि भाई आपके चेहरों में शिया होने की कोई अलामतें नजर नहीं आ रही, क्या बता क्या वजह है, सवाल किया। तो उन लोगों ने कहा कि मौला वो अलामात क्या होती हैं। उन्होंने आगे से इमाम से सवाल किया, कम से कम उन लोगों को इतनी मार्फत थी, कम से कम उन लोगों को इतनी मार्फत थी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जी अच्छा अब इमाम ने हमसे सवाल किया तो हमें तो फिर जवाब देना है। उन्होंने सवाल किया, हम तो जवाब देंगे, इमाम को शो करेंगे, उनको यानी कन्विंस करेंगे, या उनको इतना बताएंगे कि जी हमें कितना ज्यादा प्यार है और हम किस तरह के लोग हैं। नहीं, उन्होंने ये इतनी नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, इमाम ने अगर ये सवाल पूछा है इसका मतलब ये है कि हम जिन चीजों को समझते हैं कि जो अलामत हैं शिया होने की वो नहीं, क्योंकि अगर हमें पता होता तो इमाम ये सवाल ना करते, वो हमारे चेहरों में उन अलामतों को देख लेते। तो इमाम ने कहा कि जो शिया है ना उनकी साइंस उनकी अलामत ये हैं कि उनके चेहरे जो है ना वो जर्द होते हैं, उनके चेहरे जर्द होते हैं क्यों, इबादतों की वजह से और खुदा के खौफ में। लेकिन अभी हम ये बात पहले भी आपको बता चुके हैं, हम खुदा से कम डरते हैं, शैतान से ज्यादा डरते हैं। वह सब थे, वो एक मुश्किल हुई तो सीसस का एक बंदा खड़ा था, और उसने वो एक मछोरा वाकया, लेकिन जो उसके अंदर इस मौके में मुहिम चीज है वो आपको बताना चाहें कि उसने उस बंदे से वैसे आईडी मांग ली। अब ये नकल कर रहे हमारे एक बहुत अच्छे भाई, जो कि उन्होंने कहा कि उस बंदे से सिर्फ उसने आईडी मांग ली कि मुझे आईडी दिखाओ। अब वो कहते हैं कि उसके हाथ जैसे ना कांपने शुरू हुए हैं, और कांपते 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 यानी उसने अपने वॉलेट को बड़ी मुश्किलों से पकड़ा, और उसको काफी अरसा लगा, यानी वो इतना ज्यादा कांप रहा था। उसमें से उसने कांपते कांपते जो है वो आईडी निकाल के जो है वो उस बंदे को दिखाई। सिर्फ उसने क्या मांगा था, आईडी मांगी थी, ये खौफ की हद देखें, इंतहा देखें। खुदा के सामने हम हर वक्त हाजिर हैं, हर वक्त हम हाजिर, ना कि सिर्फ नमाज में, हम हर वक्त उसके सामने हाजिर हैं। कितने हमारे चेहरे जर्द होते हैं, और अगर हमें इतनी मार्फत नहीं है कि हम हर वक्त खुदा के सामने हाजिर हैं, तो नमाज में तो हम उसके सामने हैं ना, कम से कम। تو نماز میں کتنے ہمارے چہرے زرد ہوتے ہیں؟ تو امام نے کہا ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں عبادت سے اور خوف خدا سے اور ان کی کمریں خم ہوتی ہیں. کس وجہ سے؟ کہ نماز کی وجہ سے. کہ اگر آپ مثلا ایک جھکی ہوئی حالت کے اندر زیادہ دیر رہیں تو وہ جو کمر کی ہڈیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اس پوزیشن کے اندر جو ہے نا وہ رہنے لگ جاتی ہیں اور ان کی کمریں جو ہیں وہ خم ہوئی ہوتی ہیں نمازوں کی وجہ سے اور ان کے جو پیٹ ہیں وہ پسلیوں کے ساتھ یعنی وہ ان کی کمر کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ روزے رکھ رکھ کر. اور ان کی جو زبانیں وہ خشک ہوتی ہیں, ان کی زبانیں خشک ہوتی ہیں. جب آپ روزے کے اندر آخر ہوتے ہیں نا افطاری سے پہلے تو آپ کے یہاں پہ وہ سفید سفید خشکی آ جاتی ہے, پانی نہیں پیا ہوتا. تو کہتے ہیں کہ یہ خشکی ان کی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ذکر الہی کے اندر رہتے ہیں اور وہ جو ذکر الہی ہوتا ہے ان کی ہر وقت جو ہے وہ زبان اور ہونٹ خشک رہتے ہیں اور ان کے دل جو ہیں وہ خوف خدا سے بھرے رہتے ہیں. اب یہ ہیں اعضاء, یہ ہے جز, یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو جب جمع ہو جائیں تب آپ اس چیز کو شیعہ کہہ سکتے ہیں. جیسے بتایا گھر ہے, اس کی اگر چھت ہے, دروازے ہیں, دیواریں ہیں, بنیاد ہے, تب آپ اس کو گھر کہہ سکتے ہیں. تو شیعہ بھی تب آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ چیزیں اس شخص کے اندر ہوں. اگر نہیں ہے تو امام کے حوالے سے وہ بندہ شیعہ نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ امام کہتے ہیں کہ آیا کافی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کی نسبت دے شیعوں کی طرف یعنی شیعہ مذہب کی طرف اور کہے کہ میں محب ہوں؟ امام نے یہاں پہ شیعہ کا لفظ نہیں استعمال کیا, انہوں نے کہا کہ حتیٰ کوئی شخص نسبت دے کہ میں شیعہ مذہب کے ساتھ نسبت رکھتا ہوں اور یہ بات کہے کہ میں محب اہل بیت علیہ السلام ہوں. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ وہ شخص شیعہ نہیں ہے جب تک کہ اس کے دل کے اندر خوف خدا ہو اور وہ خدا کی اطاعت کرتا ہو. وہ کہتے ہیں کہ کیسے, یہ ان کے لیے باعث تعجب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص شیعہ مذہب کی طرف اپنی نسبت دے لیکن اس کے دل میں خوف خدا نہ ہو اور اطاعت الہی نہ ہو, صحیح؟ اور وہ کہے کہ میں محب ہوں اہل البیت علیہ السلام. آپ اگر کسی کے محب ہیں تو اس کی ایک ایک ادا آپ کو پیاری ہے, اس کا ایک ایک حکم آپ کو پیارا ہے, وہ سر آنکھوں پہ ہے, وہ کبھی آپ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ محبت کی علامات ہے. محب کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب کی اطاعت جو ہے وہ سب سے زیادہ محب کے اندر پائی جاتی ہے. اس دنیا کے اندر ٹائٹل سے اطاعت ہوتی ہے, صحیح ہے, ٹائٹل سے اطاعت ہوتی ہے, خوف سے اطاعت ہوتی ہے, صحیح. لیکن اس دنیا میں سب سے زیادہ اطاعت, سخت اطاعت, یعنی جو سب سے زیادہ اطاعت کوئی کرتا ہے نا وہ محب کرتا ہے محبوب کی. اس سے زیادہ کوئی اور دقیق اطاعت اس دنیا میں نہیں ہے. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو بتایا کہ اگر تم دیکھنا چاہو کہ ہمارے ماننے والے یا ہم سے جو ہے وہ ہمارے ماننے والے ہماری اطاعت کرنے والے کون سے لوگ ہیں تو آپ دیکھیں کہ کون گناہوں سے بچتا ہے اور کس فیئرس اور کس کا کہ خدا کا اس کے دل کے اندر خوف ہے اور امید, خوف خدا رکھتا ہے اور امید رکھتا ہے خدا کے ثواب کی. جب بھی آپ اگر کسی ایسے شخص کو دیکھو تو اس بات کو جان جاؤ کہ وہ ہمارا ماننے والا ہے. ڈیووٹی کا لفظ ہے ادھر, اب آپ اردو کے اندر اس کا جس طرح سے ترجمہ کرنا چاہیے, یعنی کیا, یعنی اس بندے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں چھٹے امام کا ماننے والا ہوں یا میں ان کا ڈیووٹی ہوں یا میں کسی بھی امام کا ڈیووٹی ہوں, اس کو کہنے کی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھو کہ وہ گناہوں سے بچ رہا ہے, خوف خدا رکھتا ہے, خدا کی جزا اس کی ریوارڈ کی امید رکھتا ہے, تو تم اس بات کو مان جاؤ کہ وہ ہمارا ماننے والا ہے. उस जमाने के अंदर, जब छठे इमाम के जमाने के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो मुखबरी होती थी और बहुत ज्यादा मुश्किल थी, लोग अपना जो है वो अकीदा नहीं जाहिर करते होते थे। कहते थे कि भाई हम मसलन अगर कोई पूछ लेता था तो वो तकिया के हवाले से, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं कि भाई जो अब हमारा तकिया का कॉन्सेप्ट है, वो काम करते थे और उस बिना पे काम करते थे कि जिस तरह से होता है ना कि एक सिपर होती है, यानी आपके पास एक ढाल है, आप ढाल से वार रोक रहे हैं लेकिन साथ में वार भी कर रहे हैं। वो तकिया का मतलब ये नहीं कि बैठे हुए हैं, सही। वो लोग जो है वो जाहिर नहीं करते होते थे, तो इमाम ने उनको एक मेजरिंग स्केल दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप देखना चाहो कि भाई हमारे मानने वाले कौन है, ये जाहिर करना मुश्किल हो जाता था ना, तो ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते कि बताएं कि जी हम छठे इमाम के मानने वाले। तो कहते कि मैं आपको स्केल बताता हूँ, स्केल ये है कि जो गुनाहों से बचता हो, खौफ खुदा रखता हो और उम्मीद रखता हो खुदा के सवाब की, तो मान जाओ, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मान जाओ कि वो हमारा डिवोटी है, मानने वाला है। एक और हदीस है, ये भी आपने सुनी हुई है, ये भी छठे इमाम से है कि इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो बंदा हमारे में से नहीं है और हम उसकी कोई इज्जत नहीं करते। वो बंदा हमारे में से नहीं है और हमारे उस हम कोई उसकी इज्जत नहीं है, इस्टीम नहीं है, कोई हमारे सामने उसका कोई रुतबा मर्तबा नहीं है। वो बंदा जो कि एक शहर में रहता हो, मसलन 1,000, यहाँ पे जो हदीस के अल्फाज हैं वो कि 1 लाख है, 100,000, 1 लाख 100,000 के लोगों एक शहर के अंदर, वो शहर के अंदर रहता हो, कि अगर उस बंदे से बेहतर कोई और बंदा हो, कोई नॉन शिया उससे ज्यादा तकवा रखता हो। अभी ब्रह्मंडन के अंदर मसलन हमारी तादाद, वही जो शिया जिस तरह से हम फिरके के हवाले से बात करते हैं, हमारी तादाद हमारे बाकी के भाइयों से ज्यादा है, कम है, सही ना, कम है। अब हो सकता है लाख की आबादी ना, हो सकता है कि 40-50 हजार की हो, लेकिन अगर 40-50 हजार की आबादी के अंदर कोई ऐसा मुसलमान है जो हमारे से ज्यादा मुत्तकी है, परहेजगार है, एक बंदा भी अगर है, तो हमें शिया नहीं कहा जा सकता। शिया वो बंदा होगा कि इमाम के कहने के मुताबिक कि अगर 1 लाख की आबादी है तो उससे ज्यादा कोई तकवा परहेजगार ना हो। इन अहादीस से जो हमें नतीजा मिल रहा है वो यही है कि बगैर इताअत इलाही के, बगैर गुनाहों से बचने के, बगैर तकवा को लाने के, बगैर इबादात के, रोजों के, इन तमाम चीजों के, हम आइम्मा अलैहिस्सलाम के शिया नहीं कहलाए जा सकते। विलायत के हवाले से भी आगा ने डिस्कशन की है। अब उसकी जो डिस्कशन, अगर हम आपको थोड़ा सा विलायत को अगर हम मोहब्बत ही के हवाले से ले लें, अगर हम मास्टरशिप के हवाले से ना भी लें, अगर मोहब्बत ही के हवाले से ले लें, तो जो हदीसों के अंदर आया कि जो आयमा अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है वो एक हिज़्न, वो क्या कहते हैं, किला बन जाता है, या किला समझते हैं ना आप, एक ऐसी चीज बन जाती है कि जो इंसान को प्रोटेक्ट करती है, और जो शख्स उस किले के अंदर दाखिल हो जाता है वो अमान में रहता है खुदा के अजाब से, सही। अब किला जो है वो हम अगर देखें ना कि इससे फिर क्या होगा, इस आयश का ये मतलब है कि हम जो है वो कोई हमें कोई मुश्किल नहीं दरपेश आएगी, कि किले में चले गए तो अब कोई मुश्किल दरपेश नहीं आनी, नहीं, मुश्किल दरपेश आएगी, हमले होंगे, लेकिन जब तक हम उस किले के अंदर हैं हम उन हमलों को बर्दाश्त भी कर लेंगे और बच भी जाएंगे। लेकिन अगर उस किले से बाहर निकल आए तो फिर हमारी बचत मुमकिन नहीं है। अगर ये जो मोहब्बत है ना, हम अगर वाकई सच्ची मोहब्बत ले लें, यकीन करें, तो हमारा जिस्म भी बचेगा और हमारी रूह भी बचेगी। अगर हम सच्ची मोहब्बत नहीं लेते अहलुल बैत की, तो कोई गारंटी नहीं कि हम बच सकें। कोई गारंटी नहीं है। और ये बहुत हमारे साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये मुश्किल दरपेश है कि हम मोहब्बत को जो है वो बगैर शरायत के लेते हैं, यानी अम्मा के साथ हमारा जो ताल्लुक है ना, यानी शोहर मियाँ और बीवी के दरमियान में जो है वो मोहब्बत होती है, लेकिन वो मोहब्बत शरायत के साथ होती है। अगर आप किसी भी अपनी दुनिया की रिलेशनशिप देख लें ना, मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत है वो शरायत के हवाले से। क्या शरायत है? कि जब मियाँ बीवी के हकूक को अदा करता है और बीवी मियाँ के हकूक को अदा करती है, तो फिर वो दोनों के दिल में उनकी मोहब्बत बैठती है, सही है ना? अगर मियाँ बीवी के हकूक को ही ना अदा करे और ना ही बीवी उसके हकूक को अदा करे, तो ये कोई इसके अंदर दीन इस्लाम वाला बात नहीं है। किसी भी आप कल्चर में चले जाएं, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं होगी। वो कहेंगे भाई ये मियाँ जो है ना हमारा ख्याल रखते हैं ना कुछ, और तो हम इससे मोहब्बत करके क्या करेंगे, और शोर जो है वो उल्टा यही बात कह रहा होगा। यानी दुनिया की अगर हर रिश्ते को देख लें ना, जिस रिश्ते को भी आप मोहब्बत का रिश्ते कहते हैं वो बगैर शरायत के नहीं है। माँ बाप का है वो भी देख लें आप, बच्चों का यानी भाई बहन का, कोई भी रिश्ता आप इस दुनिया का देखें, हम इस्लाम के अलावा इस वक्त बात करें, जो बदी चीज है, जो कि खुली हुई चीज है, रोशन चीज है, किसी भी रिश्ते के अंदर मोहब्बत बगैर शरायत को किए हुए नहीं आती, उनको अदा किए हुए नहीं आती। तो अब आप मुझे ये बताएं कि हम आइम्मा के साथ क्यों फिर शरायत को भूल जाते हैं कि जी बस अली वलीउल्लाह कह दिया तो खुद ब खुद बचत होगी, कोई शर्त नहीं देखनी, कोई शर्त नहीं देखनी, नारा लगा लिया बगैर कोई शरायत के, बस ठीक है हम मुहिब है। वो शराइत है उनकी मोहब्बत की। अगर हम उन शराइत को पूरा कर रहे हैं तो फिर इमाम कहेंगे कि हाँ हसन तुझसे मुझे मोहब्बत है, बगैर शराइत को अदा किए हुए इमाम नहीं कहेंगे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। हमें उन शराइत को जो है वो मद्देनजर रखना पड़ेगा, वह इल्ला हमारी ये मोहब्बत सिर्फ कहने की जो है वो काफी नहीं है। अच्छा एक और सवाल पढ़े मोहम्मद। अब यहाँ पे साहब वो जो बात हो रही थी ना वो ये अब हदीस आई है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने इस हदीस के हवाले से ना उन्होंने पहले शियों की जो है वो सिफात को बयान किया। अब वो जो शियों की सिफात जो उन्होंने बयान की, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो उन्होंने शियों के हवाले से बयान की, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हुई है, या जो छठे इमाम ने बयान की है, या जो हर इमाम ने बयान की है, वो सिफात एक ही है। यानी आपको इसके अंदर तजाद नजर नहीं आएगा। अगर आप ये कहें कि जो इमाम अली ने सिफात बताई है वो दूसरे नहीं, तमाम आइम्मा ने यही सिफात बताई है। आप जिसका भी कहें कि मैं शिया हूं, तमाम ने अपने शियों की सिफात यही बताई जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के अभी गुजर चुकी या जो अभी हमने आपसे बात की। तो सिफात को बयान करने के बाद इमाम कहते हैं कि या जाबिर, आया काफी है, इज इट इनफ फॉर वन, आया काफी है कि वो कहे कि मैं प्यार करता हूं अली के साथ, कि मैं प्यार करता हूं अली के साथ और मैंने उनकी विलायत को पा लिया है, लेकिन वो उसके ऊपर कोई अमल ना करे। उन्होंने हजरत जाबिर से सवाल किया कि भाई आया आपके ख्याल में ये बात काफी है कि अगर कोई कह दे जबान से कि मैं मुहिब्बे अली हूं और मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत रखता हूं और उसका कोई अमल ना हो, आया ये काफी है ये बात? तो इमाम ने खुद ही इसका जवाब दिया। इमाम ने कहा कि अगर कोई कहे कि मैं रसूल से प्यार करता हूं, अच्छा उन्होंने अब एक और, ये तो उन्होंने बात कह दी शियों के लिए, इसको गौर से सुनेगा, ये तो उन्होंने बात कह दी शियों के लिए, अब वो किसकी तरफ आ रहे हैं? हमारे दूसरे भाइयों की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आया अगर कोई कहे कि मैं रसूल से प्यार करता हूं, क्योंकि वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से बुलंदतर मर्तबा रखते थे, सही, अब ये बात उनकी दूसरे भाइयों की तरफ कि वो बुलंदतर मर्तबा रखते थे और मैं शियाए आले मैं शिया मोहम्मद हूं, कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिया हूं, तो कहते हैं कि अगर वो ये क्लेम भी करे, इस बात का कहे भी, लेकिन वो अहलुल बैत अलैहिस्सलाम को फॉलो ना करे, وہ اہل البیت علیہ السلام کو فالو نہ کرے کہ جس رسول نے خود کہا ہے, جس کے آپ شیعہ ہیں, جس رسول کے آپ شیعہ ہیں, اس نے خود کہا ہے کہ میری اہل البیت علیہ السلام کی اطاعت آپ پہ واجب ہے, اور کہا ہے کہ ان کے ساتھ آپ محبت کریں. کلا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربۃ. تو کہتے ہیں کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ رسول کے ساتھ پیار کا دعویٰ کیا جائے لیکن اس کی اہل البیت علیہ السلام کی اطاعت نہ کی جائے. کہتے ہیں کہ صرف اور صرف میئر کلیم آف لو از ناٹ سفیشینٹ, کہ صرف کہہ دینا کہ میں پیار کرتا ہوں یہ کافی نہیں ہے. صحیح. صلوات پڑھو. ایک اور بھی حدیث ہے, وہ ہم اس کے حوالے سے پہلے چھ حدیث کے اندر ذکر کر چکے ہیں. اس کا بھی جو مقصد ہے وہ یہی ہے, ہمیں سمجھانا کہ بغیر عمل کے آپ یعنی ہماری یعنی حدیث کے ایک جملے کو ہم بتا دیں آپ کے بھی کوئی صرف یا پڑھ ہی دیتے ہیں آپ کو کہ یہ بھی جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی کہ اے جابر, خدا کی قرب جو ہے خدا کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا سوائے اس کی اطاعت کے. اور اگر ہمارے شیعہ خدا کی اطاعت نہ کریں اور اس کی یعنی اس کی اطاعت نہ کریں اور وہ اعمال کو انجام نہ دیں, اعمال حسنہ کو انجام نہ دیں, تو ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچا دیں. ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچا دیں. صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں شیعہ ہوں, آئی ایم اے شیعہ, میں یہ بجا کہ یہ انگلش کے اندر اس کا ترجمہ ہوا ہوا ہے لیکن عربی کے حوالے سے بھی جو حدیث دیکھی ہوئی اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں شیعہ ہوں, یہ کافی نہیں ہے خدا کے لیے, یہ خدا کے سامنے کافی نہیں ہے, حجت نہیں ہے, آرگیومنٹ نہیں بنتا کہ میں کہہ دوں کہ میں تو شیعہ ہوں, یہ آرگیومنٹ نہیں بنتا خدا کے سامنے. اللہ میاں نے وعدہ نہیں دیا ہوا کہ وہ فلا دے گا, رحم کرے گا کن لوگوں کے اوپر, جو شیطان کو جو شیطان کے مثلا اطاعت کرتے ہوں. اور جو اطاعت کرتے ہوں وہی شخص جو خدا کی اطاعت کرتا ہے وہ ہمارا ولی ہے, یعنی وہ ہمارا محب ہے. اور جو گناہ کرتا ہے, اب اس جملے کو سب میں نے سنانے کے لیے حدیث پڑھی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. صحیح, جو گناہ کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور ہماری ولایت کو کبھی وہ پا نہیں سکے گا سوائے اس کے کہ وہ تقویٰ اور اعمال حسنہ کو انجام دے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ولایت سے اہل البیت علیہ السلام اور ان کی محبت جو ہے وہ کتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے, کتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اب اس کے بعد آغا نے جو ہے وہ تقویٰ کی کچھ کیٹیگریز بتائی ہیں, لیکن یہاں پہ اب ایک آپ کو واقعہ ہے وہ میں سنا دوں اور درس کو جو ہے ہم تمام کرتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں. محمد ابھی ہم تھوڑا سا آگے جا کے اس واقعے کو بیان کریں, اس ترتیب میں نہیں جا رہے لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ چیزیں جو ابھی اس واقعے سے پہلے ہیں ان کو بیان کریں گے. اور یہ ہمارے لیے یعنی یہ واقعہ جو ہے وہ ایک امید کی کرن رکھتا ہے. ابھی جو ہم نے باتیں آپ کو بتائیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈر جائیں یا مثلا یہ کہ ہم ہوپ لیس فیل کریں کہ یار اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں اور اتنا زیادہ ہیں تو ہمیں کدھر سے شفاعت ملے گی اور کس طرح سے ہوگا. تو یہ صرف کس مقصد کیا ہے کہ آپ کے دلوں میں امید کی کرن جاگے اور آپ کے اندر موٹیویشن آئے. در حقیقت میں جو شفاعت کے اندر بلیو کرتا ہے نا وہ سٹیڈ فاسٹ ہوتا ہے. वो शख्स जो है ना वो कमिटेड होता है, स्टेडफास्ट होता है, साबित कदम होता है। शफायत का फायदा ही है, सुस्ती नहीं है बल्कि क्या है,
बिल्कुल
स्टेडफास्ट होता है वो, अपने कदम अपने जो है कदम जमा के काम करता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज है कि अगर वो कोशिश जारी रखे तो उसे पता है कि आखिरत में वो क्या है, बच जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, उसे कोशिश करनी है। सही, तो ये अब उम्मीद के लिए तारीख के अंदर 173 AH, तो उसके अंदर सैयद हिमयारी उनका नाम, वो यानी उस 173 के AH जो है वो हिजरत के बाद, आफ्टर हिजरत जो है वो फौत हुए, लेकिन यानी वो उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम का दौर देखा और इमाम अली अलैहिस्सलाम से वो बहुत ज्यादा जो है वो मोहब्बत करते होते थे। और इमाम के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है वो कसीदे लिखे हुए थे। अब जो उन्होंने कसीदे लिखे हुए थे वो क्या करते थे कि जहां पे भी कोई होती थी ना मजलिस होती थी, लोग बैठे हुए होते थे, उधर वो चले जाते थे और कहते थे कि मैंने ये कसीदे पढ़ने, और उनके कसीदे जो है वो किताबों के अंदर भी हैं, उन किताबों के नाम भी आगे ने यहाँ पे लिखे हैं। और उनके जो कसीदे होते थे वो इमाम की हर सिफत को ना, उनकी शुजात को, उनके हिल्म को, उनके सबर को, हर एक सिफत के बारे में उन्होंने कसीदा लिखा हुआ था। और जहां जहां पे लोग बैठे हुए होते थे वो वहां पे चले जाते थे और इसरार करते थे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये नहीं कि कोई उनको कहता था बल्कि वो इसरार करते होते थे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। और किताबों के जो नाम है वो यहाँ पे आगा ने कहा कि शिया और सुन्नी दोनों किताबों के अंदर इनका जिक्र भी है और उनके ये कसीदे भी हैं, कि कशफुल गम्मा में है, अमाली में है, शेख सदू की बिशारतुल मुस्तफ़ा में है, रिजाल काशी में है, इस तरह से। उन्होंने ये अब एक ये एक मौजा हुआ है जो कि तारीख के औराक के अंदर लिखा हुआ है, और ये शिया किताबों में भी और सुन्नी किताबों में भी है। ये वाकया है उनकी एहतजार यानी जब वो मौत के नजदीक थे। सही, तो कहते हैं कि सैयद जो थे ना उनका चेहरा बहुत प्यारा था और वो काफी हैंडसम थे यानी उनकी, तो वो जब ये वक्त था उनका मौत के करीब था तो लोग उनके इर्द गिर्द जमा हुए थे, बिलाखिर पता था कि आगा जो है वो जाने वाले, तो उसके अंदर उन लोगों के अंदर शिया भी थे और सुन्नी भी थे, यानी अहले बैत अलैहिम सलाम को मानने वाले भी थे और नहीं मानने वाले भी थे, मोहब्बत करने वाले भी थे और मोहब्बत नहीं करने वाले भी थे। तो उन्होंने देखा कि एकदम से ना सैयद की जो चेहरा है ना वो यानी उनकी कैफियत बदलने लगी और उनके चेहरे पे ना एक काला निशान शुरू हुआ और वो बढ़ता गया और उनका पूरा चेहरा काला हो गया। और सैयद इतनी ज्यादा दर्द में था ना कि वो बेहोश हो गया, यानी उस दर्द से जो है वो सैयद बेहोश हो गया। तो जो लोग उस उनके इर्द गिर्द थे ना वो जो अहले बैत अलैहिम सलाम को नहीं मानते थे वो कहते देखो ये बड़ा कहता था कि मैं मुहिब हूँ अहले बैत अलैहिम सलाम का, बड़े ये कसीदा पढ़ता होता था, देखो इसका क्या हाल हो रहा है। तो अभी वो अगर बेहोश हो गए तो जब उठे ना तो उन्होंने क्या किया कि नजफ के तरफ रुख किया, मुझे आगा की बातें बहुत प्यारी लगी। उन्होंने नजफ की तरफ रुख किया और उन्होंने कहा कि या अली के ए अमीरुल मोमिनीन, आप तो मरकज हैं उन लोगों के जिनके के कोई मददगार नहीं है, आप मरकज हैं उन लोगों के जिनका के कोई मददगार नहीं है, जो कि हेल्पलेस हैं, जिनका के पास कोई नहीं है। उन्होंने फिर सवाल किया इमाम से, उन्होंने कहा कि इमाम आया आप इस तरह से सलूक करती हैं उन लोगों के साथ कि जो आपके डिवोटी हैं, कि जिनको आपके साथ प्यार है। और उन्होंने कहते हैं कि इस बात को दो दफा दोहराया, नजफ अशरफ की तरफ मुंह किया और कहा इमाम अली सलाम कि आप तो मरकज हैं उन लोगों के जो के जिनको मदद की जरूरत है, मैं वो बंदा हूं जो कि आपसे प्यार करता था, आया आप जिन लोगों के साथ प्यार करते हैं उनके साथ इस तरह से सलूक करते हैं। उन्होंने इस बात को दो दफा कहा और जितने लोग खड़े थे उन्होंने देखा कि जैसे आगा ने इस बात को दो दफा कहा है उनका चेहरा जो काला हो गया था और जिसकी दर्द की वजह से वो बेहोश हो गए थे, वो वापस जो है वो चेहरा सफेद हो गया, वो कालाहट जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई और कोई निशान नहीं रहा, और बिल्कुल साफ शफाफ जो है उनका चेहरा हो गया। और सैयद जो है वो खुश, और फिर उन्होंने इन कसीदों को जो है वो पढ़ा। उन्होंने कहा कि किसने कहा है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को मुश्किलात में से नहीं निजात दे सकते। मैं कसम कहता हूं अपने मालिक की कि मैं जन्नत में दाखिल हो गया हूं और मेरे तमाम गुनाह माफ हो गए, और मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूं, मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूं हर उस शख्स को जो कि इमाम अली का मानने वाला है और उनके बाद 11 इमामों को मानता है। और कहते हैं कि उन्होंने इन जुमलों को कहने के बाद खुदा की तौहीद का इकरार किया, रसूल की नबूवत का इकरार किया और इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत का इकरार किया, और अपनी आंखों को बंद कर लिया और इस दुनिया से चले गए। किताब को जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने इसको पढ़ने के बाद मेरे दिल में बहुत ज्यादा उम्मीद पैदा हुई कि ठीक है मुसने के मैं हूँ गुनाहगार हूँ, बेशक बहुत ज्यादा गुनाह किए, और ऐसा कोई यह है कि कोई हमारे हाथ भी खाली, हमारे पास कुछ है भी नहीं, लेकिन मैं इस वाक्य को अपनी मौत जब आ रही होगी मैं याद कर सकता हूँ, और उस वक्त मैं ये याद करके वही काम जो सैयद ने किया मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं भी नजफ अशरफ की तरफ मुंह करके इस बात को इमाम से कह सकता हूँ कि इमाम आप इस तरह से हमारे साथ सलूक करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला हमारी मदद करेगा और हम जो है वो आखिरत हमारी अच्छी हो जाएगी। तो आप सब कभी भी जो है ना वो आपको जो खुदा ने नेमत दी है ना, आपके दिल के अंदर जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि कोई आपको जो है हरा ना सके, कि जब आपके पास ऐसी हस्तियां हैं और ऐसी हस्तियां जो कि आपको निजात दे सकती हैं, जितना भी इंसान गुनहगार बन जाए निजात दे सकती है, तो आप कैसे डिसअपॉइंट हो सकते हैं, कैसे बंदा उम्मीद हार सकता है, उम्मीद नहीं हार सकता वो। मैं आपसे ये बात मैं काफी यकीन से कह रहा हूं, अगर आप कभी भी अपने आप को इस तरह से महसूस करें कि बहुत ज्यादा गुनाह किए, बहुत ज्यादा जो है वो खुदा की नाफरमानी की है, कह के देखें, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हान ताला हमारी मदद करेगा। जो सैयद है उनकी उनके लिए जो है वो उनके सवाब के लिए जो है वो एक सलावात पढ़ दें कि उनके वसीले से तो बिलाखिर जो अहदीस जो हमसे अभी हमने वो नहीं की, वो 10 मिनट हमारे पास हैं, उसके अंदर सिर्फ एक थोड़ा सा खुलासा बता दें कि ये अहदीस जो है इसी वाक्य के मुताबिक हमें उम्मीद देंगी कि अगर इस दुनिया में अव्वल ये कि अगर अगर हम गुनाह करेंगे ना तो हमें इस दुनिया के अंदर तकालीफ इतनी आएंगी ना कि इस दुनिया से जब हम जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ हो चुके होंगे। ये यानी ये हमारे साथ है खुदा का वादा कि अगर हम मसलन गुनाह करते हैं तो हमें मुश्किलात इधर जरूर आएंगी और बहुत ज्यादा आएंगी और इतनी तकलीफ उठाएंगे कि इस दुनिया में जाने से उस दूसरी दुनिया में जाने से पहले हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ कि हमारे गुनाह कुछ रह गए तो इंशाल्लाह कब्र के अंदर हमें अजाब मिलेगा और हमारे वो गुनाह माफ हो जाएंगे, और अगर ऐसा भी हुआ कि वो गुनाह अभी भी रहे तो बरज़ख के अंदर हमें अजाब होगा और हमारे वो गुनाह धुल जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ कि बरज़ख में भी वो गुनाह ना धुल सके तो जहन्नम में हम चले जाएंगे लेकिन जहन्नम में हमेशा नहीं रहेंगे, जहन्नम में वो हमारे गुनाह धुल जाएंगे। तो ये है हमारे पास उम्मीद है। देखिए आप साहब, अब गुनाह तो जो है अगर हम बहुत दफा देखिए हाल पैदा होता है, हम बहुत ज्यादा आगा ने भी पिछली दफा पूछा था कि आगा ये क्या वजह है कि हमारे अंदर हाल भी पैदा होता है, मोटिवेट भी होते हैं और ऐसे यानी हम चाहते हैं कि बस हम अब ये हाल हमारे से दूर ना हो, लेकिन वो हाल दूर हो जाता है बिलाखिर फिर बंदा फिसल जाता है, गुनाह कर लेता है, तो कहते हैं कि फिर लेकिन दोबारा सिद्ध की नीयत से वो गुनाहों की जो है वो माफी मांगता है। ये आगा सिलसिला हमारे साथ जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक हम खुद बन नहीं जाते, अभी हम बन रहे हैं। जब चीज एक प्रोसेस में हो रही बन रही है तो वो ये प्रोसेस है बनना, लेकिन जब हम बन जाएंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो अगर कभी हमारा हाल खराब हो जाए, मसलन ये है कि दिल सख्त हो जाए, इबादत में जो है वो दिल ना लगे, या कभी ऐसा हो ही जाता है बंदे का बिलाखिर, तो अगर आप इस बात को याद रखें कि इस दुनिया के अंदर आपकी गुनाहों की सजा मिलेगी, तो जब कोई सजा आए ना, तो आप सब उसके ऊपर कंप्लेन ना करें। आप मेरे सब भाइयों, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भाई के ऊपर कोई बला आए, कोई डिफिकल्टी आए, बल्कि अगर कोई बला और डिफिकल्टी आनी तो हमारे ऊपर आए, लेकिन अगर कभी आए तो आप उस पर कंप्लेन ना करें, कभी कंप्लेन ना करें, क्योंकि वो बहुत बड़ी खुदा की नेमत है। क्या है दुनिया की है ना मुश्किल, अगर वो सबब बन रही है कि हमारे गुनाह माफ हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा बेहतर और क्या चीज है। पैसा नहीं है कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप स्ट्रेस है कोई मुश्किल, अगर कोई मुसीबत है, सेहत की मुसीबत है, कोई ऐसी मुश्किल, उसे कभी डिसहार्टन ना हो, कभी खुदा के सामने जो है वो कंप्लेन ना करें, ये उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमें इतना बड़ा समझा है, कि उसने हमें इस लायक समझा है कि वो हमें इस दुनिया के अंदर इस मुश्किल को दे रहा है कि हमारे गुनाह माफ हो जाए, ये उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो कभी भी अपनी दुनिया की मुश्किलात को जो है वो बल्कि उसको नेमत समझें, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला आ ही जाता है, कोई ऐसा बात नहीं है, वो हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि देखिए अगर इस दुनिया में मुश्किल आती हैं, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह सुब्हान तआला चाहेगा तो और मुश्किल आएंगी, मैं आपके लिए दुआ नहीं कर रहा, मैं अपने कि मैं चाहता हूं कि आए, जब बंदा मुश्किलात में नहीं होता ना तो वो खुदा को भूल जाता है, और उसके पास मौका भी नहीं होता कि वो गुनाह उसके धुले। अगर देखिए आपने मसलन ये कि गुनाहों की माफी मांगी, हो सकता है सिदके नियत से नहीं मांग सके, अब गुनाह उधर का उधर ही है, लेकिन मुश्किल आई, उस मुश्किल से आपको तकलीफ पहुंची, अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको इतना समझा कि आपके गुनाह को माफ कर दिया। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसके अंदर आपको कोई वो नहीं होनी चाहिए। तो ये कि आए जितने हैं वो आए, और आती रहे, और अच्छा है कि हर रोज आए, और यह कि ये सिलसिला जारी रहे और कभी खत्म ना हो, ताकि हम यहाँ से पाक साफ होके जाए। हम यहाँ से हम मुझे तो यानी मैं तो कम से कम नहीं चाहता कि मैं कोई गुनाह इस दुनिया से लेकर जाऊं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी गुनाह हो, क्योंकि अगर देखें एक तो चले अजाब है, अजाब ठीक है, वो मालिक के सामने, अब मालिक बंदे को अजाब दे रहा है, हम क्या उसके सामने नहीं कुछ कह सकते, ठीक है अजाब दे दे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो शर्मिंदगी है ना उससे बड़ा डर लगता है। हम जिससे प्यार करते हैं, जिसके के मसलन ये कि अपनी दिलो जान कुर्बान, उसके सामने शर्मिंदगी बहुत मुश्किल है, यानी बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह के सामने जो है वो शर्मिंदगी बहुत मुश्किल है, कि जब जाएंगे गुनाह हैं तो जाहिर है कि उनके सामने शर्मिंदगी होगी, लेकिन अगर इस दुनिया में, इसलिए अगर आप देखें ना कि मसलन अब शेख मुतहरी रहमतुल्लाह के एक वाक्य आपको बता देते हैं, और उस वाक्य के बाद आपकी जहमत तमाम, आगा का ये वाक्य उनके हालात जिंदगी के अंदर लिखा हुआ है। आगा कहते हैं कि उनके लिए कहा गया कि उन्होंने ख्वाब देखा, ख्वाब देखा, और ख्वाब में ये देखा कि खाना काबा के पास है आगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनके पास आते हैं, और पास आके उनके चेहरे पे बोसा देते हैं, उनके चेहरे पे बोसा देते हैं। जैसे उनके चेहरे पे बोसा देते हैं वो डर के मारे ना ख्वाब से जाग जाते हैं, और पसीने में मुफ्त यानी पसीना उनके पूरे जिस्म पे, और डरे हुए, और अपनी जोजा से कहते हैं कि मैं शहीद हो जाऊंगा। अगर आप इसको देखें ना, अगर हमें ये ख्वाब आए तो हम जाके क्या कहेंगे कि भाई हमें देखो कितना बड़ा, हम क्या हैं, ये हैं वो, आगा क्या कहते हैं कि मैं शहादत पा जाऊंगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा और कोई मुझे इस दुनिया में चीज नहीं चाहिए, मेरे लिए काफी है, अब जो है वो मैं जा रहा हूं। और आगा ने जब शहादत पाई है, जो गोलियां लगी हैं, जो उनको यानी जो खून निकला, जो तकलीफ हुई है, वो उनके लिए यानी बिल्कुल मासूम गए। जो हमारे उलमा को जिनको के शहीद किया गया, जो अभी भी हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा है, बहुत भाई, इसीलिए उस शहादत का हम दुआ मांगते हैं। हम तशद्दुद पसंद नहीं है, हमें जो है वायलेंस नहीं अच्छा लगता, हम अपनी खातिर दुआ मांगते, ہمیں کوئی تشدد سے رابطہ نہیں ہے. ہم اپنی خاطر دعا مانگتے ہیں کہ خدا کرے کہ اسلام کے لیے اگر مسئلے ہو تو ہم تکلیف سے اس دنیا سے جو ہے وہ جائیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں یہ توفیق ملے اور اس دنیا سے جو ہے وہ پاک صاف ہو کے جائیں, اور جن کے سامنے ہمیں جانا ہے ان کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں, اور خدا ہمیں ثابت قدم رکھے, ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے شیعہ بنے کہ جس کے اندر وہ تمام صفات ہوں جو کہ امام ہمیں خود ہماری تصدیق کریں کہ ہم واقعی ان کے شیعہ ہیں, اور اگر ہم شیعہ نہ بن سکے تو کم سے کم امام ہماری یہ تصدیق کر دیں کہ ہم ان کے محب ہیں, اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو کم سے کم امام ہماری یہ تصدیق کر دیں کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے. اور انشاءاللہ کہ اس امام کا کہ جس کا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں, جس کے ہم سامنے ہیں, جو ہمیں سن رہا ہے دیکھ رہا ہے, اسے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں وہ بنا دیں تاکہ ہم ان کے جب آئیں تو لشکر میں ان کا ساتھ دے سکیں, اور دشمنان اسلام کو جو ہے وہ خدا نیست و نابود کرے, ان کے شر سے خدا ہمیں محفوظ رکھے, اور جتنے بھی مومنین اور مومنات اور مسلمان اس دنیا کے اندر ہیں خدا ان تمام کے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کی آخرت کو اچھا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.